जानवी हिम्मत करके ग्राउंड से खड़ी हुई थी, पर खड़े होते ही उसे पूरी धरती घूमते हुए नजर आ रही थी, इसलिए वो वापस गिर पड़ी। उसने मुश्किल से आंखें खोलकर सामने फिर से देखा। संयम धीमे कदमों से उसके पास आया और फिर उसके सामने बैठते हुए उसके माथे पर झूलते बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए बोला, सच में बिल्कुल मन नहीं कर रहा है तुम्हें मारने का। इतना बोलने के साथ ही संयम ने जानवी का जबड़ा पकड़ लिया, जिसे डरते हुए जानवी ने एक पल के लिए अपनी आंखें भींच ली। संयम ने गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा, तुम्हारी वजह से अद्वैत शेखर ने हमें जलील किया, मुझे गोली मारी, मैं उसको कभी नहीं भूल पाऊंगा और इसका बदला भी तुमसे लिया जाएगा। ये सुनकर जानवी ने झट से आंखें खोलकर संयम के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी, वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि अद्वैत ने उसके लिए संयम को गोली भी मेरी होगी या फिर संयम और जसवंत दोनों को जलील किया होगा। जानवी ने लड़खड़ाती जुबान में कहा, मैं तो तुम दोनों को जानती भी नहीं हूँ, तो अद्वैत तुम दोनों को जलील कैसे कर सकता है? ज़रूर उसी ने तुम दोनों को भेजा होगा, क्योंकि मेरी वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ है और मैंने उसे ठुकरा भी दिया। संयम शैतानों की तरह हंसते हुए बोला, सिर्फ शक्ल से सुंदर हो, बाकी तुम्हारे अंदर दिमाग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शहर को देखकर लगता है वो तो तुमसे पागलों की तरह प्यार करता है, और अक्सर विलन का प्यार ज़्यादा मजबूत होता है हीरो से, और तुमने उसे ठुकरा दिया। सो बैड, तभी मैं सोचूं अद्वैत शेखर ने ये शहर को छोड़ दिया और वो टूटा हुआ आशिक बेचारा अपनी महबूबा को बचाने यहाँ आ भी नहीं पाएगा, और तुम्हारा पति तो अभी अपने छोटे भाई की देखभाल करने में बिजी है, तो उसके आने का कोई सवाल ही नहीं उठाता। एक सच्चे आशिक की मोहब्बत ठुकराने का जुर्म किया है तुमने, समझ लो बस उसी की सज़ा हमारे हाथों से तुम्हें मिलने वाली है। इतना बोलकर उसने एक नज़र जसवंत की तरफ देखा और वे दोनों एक साथ जोर जोर से हंसने लगे। जानवी की आंखों से आंसू निकलकर संयम के हाथों पर गिरने लगे। जानवी मन ही मन अमर को याद कर रही थी, प्लीज़ हमारे यहाँ आ जाइए, मुझे इन लोगों से बहुत डर लग रहा है। वहीं अमर गाड़ी में सांस भी नहीं ले पा रहा था, उसका एक हाथ लगातार उसके सीने पर घूम रहा था और खुद को ही वो तसल्ली दे रहा था कि उसकी जान को कुछ नहीं हुआ होगा। उसके होठ बुरी तरह सूखे हुए थे और उन पर पपड़ी आ चुकी थी। वो एक नज़र सड़क को देख रहा था तो दूसरी नज़र उस ट्रैक्टर को, जिसमें जानवी के फ़ोन की लोकेशन थी। जसवंत के एक आदमी ने फ़ोन पर किसी से बात की और उसके बाद जल्दी से जसवंत के पास आकर उसके कान में धीरे से कुछ बताया, जिसे सुनकर जसवंत की आंखें फैल गईं। वो जल्दी से चौकी से उठा और संयम के पास जाते हुए बोला, जल्दी करो, इस लड़की को ख़त्म करो, अमर रावत अस्पताल से निकल चुका है और वो ज़रूर सीधा यहीं आएगा। मुझे लगता है हमने कोई गलती कर दी है, हम उस गलती को तो नहीं ढूंढ सकते हैं, पर यहाँ से जल्दी भाग सकते हैं। इतना बोलकर उसने एक नज़र गुस्से से जानवी की तरफ देखा। संयम भी अमर का नाम सुनकर थोड़ा सा घबरा चुका था। उसने जानवी का जबड़ा छोड़ा और फिर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी जेब में टंगी गन को निकालकर लोड करते हुए कहा, चाहे अमर रावत यहाँ पहुँच ही क्यों न जाए, इस लड़की को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलते हुए उसने अपनी गन जानवी की तरफ पॉइंट कर दी। उसे शूट कर पाता उससे पहले ही अचानक धूल उड़ाते हुए तेजी से चलती हुई एक गाड़ी उसकी तरफ बढ़ने लगी। संयम ने इधर उधर नजरें घुमाकर देखा। उसे साइड के तीन बॉडीगार्ड उस गाड़ी के नीचे बुरी तरह कुचल चुके थे और अब वो संयम की तरफ इस तरीके से बढ़ रही थी जैसे किसी भी पल संयम के चित्रे भी उड़ने के लिए तैयार हैं। संयम जल्दी से हट गया और जानवी ने जल्दी से दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। उसका दिल डर के कारण जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि संयम को रास्ते से हट चुका था। इसका मतलब था अब वो गाड़ी सीधा जानवी को चोट पहुंचाने वाली है, लेकिन वो ठीक जानवी के सामने आकर एक जोरदार ब्रेक के साथ रुक चुकी थी। वो गाड़ी जानवी के इतने करीब थी कि डर के कारण जानवी की रूह भी कांप उठी थी। उसने जैसे ही देखा कि गाड़ी रुक चुकी है, उसने नजरें उठाकर ड्राइविंग सीट पर देखा, पर वहां अमर की बजाय किसी और को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि खुद अद्वैत शेखर था, जो इस शहर में ना होते हुए भी जानवी की पल पल की खबर रख रहा था ताकि उसकी हिफाजत कर पाए। जानवी ने जरूर उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया था, पर मोहब्बत करना या ना करना तो खुद के ऊपर होता है, और अद्वैत को अपनी मोहब्बत बहुत प्यारी थी। जरूरी नहीं वो मुकम्मल ही हो, उसे इस अधूरी मोहब्बत से भी बेहद लगाव था, इतना लगाव कि वो चाहकर भी जानवी की फिक्र करना छोड़ नहीं पाया। अद्वैत ने एक झटके से गाड़ी का दरवाजा खोला। ठीक उसी वक्त पर जसवंत ने अपनी गन निकालकर जानवी की तरफ पॉइंट कर दिया और गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, आज मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलते हुए उसने फायर कर दिया। जानवी की आंखें फटी की फटी रह गईं और साथ में ही वहां एक अजीब सी शांति पसरी, जिसमें सिर्फ उसे गन के निकलने की आवाज़ आई थी। जानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली,
कुछ पल बाद उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने जल्दी से आंखें खोलकर देखा तो पाया अद्वैत ठीक उसके सामने बैठा था। उसके दोनों हाथ उसके घुटनों पर थे और उसके सीने पर गोली लग चुकी थी। ये देखकर जानवी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। शौक के कारण उसकी जुबान से कुछ निकल भी नहीं पा रहा था। वहीं अद्वैत ने उसे दर्द को सहन करते हुए गुस्से से दांत पीचे और फिर अपनी गन निकालकर जसवंत की तरफ पॉइंट कर दिया। जसवंत ने एक और गोली चलाई जो फिर से अद्वैत के सीने पर ही लगी थी, लेकिन अद्वैत के हाथ में अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो जसवंत को शूट कर पाए और उसके कांपते हाथ से गन नीचे गिर गई। ये देखकर जानवी और भी ज्यादा डर गई। अगले ही पल अद्वैत निढाल होते हुए जानवी के सामने गिर पड़ा। उसका सर ठीक जानवी के पैरों के पास गिरा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं जो बिल्कुल लाल थीं और उनमें कुछ बूंदे आंसुओं की ठहरी थीं और वो एक उम्मीद के साथ जानवी की तरफ देख रहा था।